संस्कृत नहीं है। इसका उच्चारण करके गोस्वामी जी ने झाड़ा लगा दिया, ब्रह्म राक्षस का प्रकोप दूर हो गया, बालक स्वस्थ हो गया। अब महाराज सभी बालकों की गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रति बड़ी श्रद्धा हो गई, बोले देखो इन्होंने बचा लिया। तो विद्यार्थी आग्रह करने लगे तुलसीदास जी महाराज से कि आप कोई ऐसा स्तोत्र बनाइए जिसका हम लोग रोज पाठ करें, ऐसा स्तोत्र बताइए जिसका हम लोग रोज पाठ करें तो हमको भूत प्रेत की बाधा न रहे, क्योंकि इस विद्यालय में ये उपद्रव प्रायः हो जाया करता है, रोज पाठ कर लें फिर कोई उपद्रव न रहे। तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज केवल 14 वर्ष की आयु के थे। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान चालीसा प्रथम रचना की। वो गोस्वामी तुलसीदास जी की विद्यार्थी जीवन की रचना है। और भगवान जाने किस मुहूर्त में गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा लिखा होगा। ये हनुमान चालीसा सब चालीसाओं की दादी अम्मा बन गया। हनुमान चालीसा के पहले हनुमान चालीसा से पुराना कोई चालीसा नहीं है। होए तो बताओ, ऐसा चालीसा लिखा कि महाराज अब तो प्रेरणा लेने वाली बात नहीं है, सावधान होने वाली बात है, अब तो मनुष्यों के नाम से भी चालीसा बनने लग गए हैं। देवी देवता के नाम से बनते, रामकृष्ण के नाम से बनते, वहां तक तो ठीक था, पर अब तो अमुक अमुक व्यक्तियों के नाम से भी चालीसा बनने लग गए। देखो बहुत स्पष्ट सिद्धांत है, संत सदगुरु की बड़ी भारी महिमा है, भक्त की, आचार्य की, महात्मा की, साधु की बड़ी भारी महिमा है। इतनी महिमा है कि विधि हरिहर कवि कोविद वाणी कहत साधु महिमा सब चांदी, इतनी महिमा है। पर वो महिमा है ही इसीलिए क्योंकि इनकी कृपा से जीव भगवान से जुड़ जाता है, भगवान की प्राप्ति में ये उपयोगी हैं, सहायक हैं, इसलिए इनकी महिमा है। अब महाराज भगवान से जीव विमुख हो जाए, अब भगवान को तो बिल्कुल भूल जाए और नए कोई भगवान बन जाए, तो फिर ईमानदारी से जीव अपने लक्ष्य से विमुख हो गया। ऐसा यदि कोई गुरु कहता कि तुम्हें रामकृष्ण और भगवान की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भगवान तो हम ही हैं, कहो किस लोक में कक्ष रिजर्व करा दें, तो निंदा तो मत करना, पर ऐसे लोगों को लंबी दंडौत करके दूर हो जाना। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवं न तत्स्यान् न पतिश्च तत्स्यान् न मोचयेद्या समुपेत मृत्युम्। तो हनुमान चालीसा सब चालीसाओं की दादी अम्मा बन गया, अब तो नित्य नए चालीसा बन रहे हैं। हमारे भारतवर्ष के एक संत थे, आप लोग उनको जानते हैं, बड़े अद्भुत वक्ता थे, प्रतिवाद भयंकर उनकी उपाधि थी, परमहंस श्री रामचंद्र दास जी महाराज, अयोध्या वाले परमहंस जी महाराज। हाजिर जवाब ऐसा अकाट्य उत्तर दें कि दूसरे को उत्तर देते न बने, विलक्षण महात्मा थे। तो कहीं किसी सभा में हम भी उपस्थित थे और वे भी पधारे, तो उन्होंने सनातन धर्म, सनातन धर्म का कोई विश्व का धर्म क्या मुकाबला करेगा, हमारे गीता रामायण भागवत का मुकाबला क्या करेगा, बोले हनुमान चालीसा का मुकाबला करने की सामर्थ्य विश्व के किसी धर्म ग्रंथ में नहीं। उन्होंने कहा हनुमान चालीसा का भी मुकाबला करने की सामर्थ्य विश्व के किसी धर्म ग्रंथ में। आवाज सही है, कितने लोग बड़ी निष्ठा है हनुमान चालीसा के प्रति, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरत सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो ये गोस्वामी जी की हनुमान चालीसा रचना विद्यार्थी जीवन की रचना है, अत्यंत उत्कृष्ट रचना है। और उस समय श्री हनुमान चालीसा का पाठ गोस्वामी जी ने विद्यार्थियों को शुरू करवाया और उसके बाद उस प्रेत का कभी उपद्रव वहां नहीं हुआ। इसलिए भैया हनुमान चालीसा का पाठ जरूर किया करो, और हनुमान चालीसा का पाठ भी अर्थानुसंधान पूर्वक करना चाहिए। क्या लिखा है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान चालीसा पाठ करते हुए भी, हनुमान जी की उपासना करते हुए भी हम आसुरी वृत्ति का त्याग नहीं करते हैं तो हनुमान जी का नाम है असुर निकंदन। और भले ही आप पाठ नहीं करते हो पर राम राम करते हो, साधुता सज्जनता आप में आ गई, तो हनुमान जी को पुकारने की भी जरूरत नहीं है। साधु संत के तुम रखवारे, हनुमान जी हमारी रक्षा कब करेंगे, जब हमारे में साधुता आ जाएगी, संतत्व आ जाएगा। वे असुर निकंदन हैं, इसलिए हनुमान जी से प्रार्थना करना चाहिए, महाराज हमारे भीतर जो असुरत्व छिपा है उसको आप मार डालिए, हमको साधु बना दीजिए, हमको श्री राम प्रेम प्रदान कीजिए, हमको भगवान नाम में अनुराग प्रदान कीजिए। हनुमान जी प्रसन्न हो जाए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उस प्रेत का उद्धार किया, और प्रेत का उद्धार करने के बाद इसी बीच में एक दिन की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु श्री शेष सनातन जी वृद्ध तो थे ही, तनिक अस्वस्थता का अनुभव करके उन्होंने सहज भाव से बिना किसी विशेष पीड़ा को सहन किए अपने देह का विसर्जन कर दिया, और उनका अंतिम संस्कार भी गोस्वामी तुलसीदास जी के करकमल से ही संपन्न हुआ। अब इतना वात्सल्य रखने वाले शिक्षा गुरुदेव श्री शेष सनातन जी का जो वियोग है वो तुलसीदास जी के लिए असह्य हो गया। अब मन में विचार किया क्या करें, अले अब बोले जिन गुरु जी ने हमें शिक्षा गुरु जी की शरणागति प्रदान की थी अब उन्हीं गुरु जी का आश्रय लेना चाहिए। गुरु जी यहां से कह के गए कि हम बेटा चित्रकूट जा रहे हैं, तो गोस्वामी जी काशी से इतना वैराग्य हो गया कि उस समय काशी में गोस्वामी तुलसीदास जी सर्वमान्य विद्वान ब्रह्मचारी के रूप में प्रतिष्ठित हो चुके, अपनी मेधा के द्वारा, अपने शास्त्र ज्ञान के द्वारा काशी के प्रख्यात विद्वानों में गणना थी तुलसीदास जी महाराज की, और अपने ग्रंथों को भी आपने वितरित कर दिया, और एकाकी वैराग्य भाव से काशी छोड़कर चित्रकूट की ओर चल पड़े, पैदल चल करके विंध्याचल, और विंध्याचल से होते हुए गोस्वामी जी चित्रकूट पधारे। अभी चित्रकूट के निकट पहुंचे ही, पहुंच नहीं पाए थे, निकट ही पहुंचे थे, चित्रकूट में प्रवेश नहीं किया था, कामतानाथ जी की सन्निधि प्राप्त नहीं भई थी। इसी बीच में कोई प्रेमी संत मिले, परिचित संत मिले, संत को प्रणाम किया, संत से श्री स्वामी नरहरदास जी के संबंध में गोस्वामी जी ने जानना चाहा, तो उन संत के नेत्र सजल हो उठे। उन्होंने कहा श्री नरहरदास जी महाराज तो साकेत प्रयाण कर चुके, गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर मानो वज्रपात के जैसा हो गया। शिक्षा गुरु भी अंतर्धान हो गए और दीक्षा गुरुदेव भी अंतर्धान हो गए। हाय मैं अनाथ हो गया, क्योंकि अब गुरु जी के अलावा और किसी को जानते ही नहीं थे, और कोई शरीर संबंध में तो किसी के प्रति राग था ही नहीं, और गुरु महाराज भी चले गए। तो इतने व्याकुल हो गए, इतने व्याकुल हो गए, बोले किं करोमि क्व गच्छामि, कहां जाऊं, क्या करूं, किं कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति को प्राप्त हो गए तुलसीदास जी महाराज। तब तक बहुत देर तक तो रुदन करते रहे, अंत में विचार किया अब क्या करना चाहिए, काशी जाएं, अरे बोले काशी तो छोड़ के आए हैं, तो चित्रकूट जाएं, बोले वहां गुरु जी की कुटिया सुनी देखकर और अधिक पीड़ा हो, क्या करेगा। बहुत देर तक तो रुदन करते रहे, बाद में सहसा मनुस्मृति के एक वाक्य पर उनका ध्यान गया। मनु महाराज कहते हैं, जन्मदात्री माता और जन्मभूमि यह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि गरीयसी। तो अब तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन्मभूमि का दर्शन नहीं किया था, क्यों, बोले बचपन में ही तो माता चुनिया को देकर के विदा हो गई संसार से, लौट करके आप सुन चुके हैं कल, लौट करके राजापुर आए नहीं, और अब इस अवस्था में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अब इस अवस्था में कभी जन्मभूमि का दर्शन हुआ नहीं था, इस अवस्था तक कोई अवसर ही नहीं है। पर आज जब किसी पथिक से उन्होंने पूछा कि भैया यहां आसपास कोई गांव है क्या, बोले हाँ हाँ, यहां पास में ही यमुना जी हैं और यमुना जी के तट पर बसा हुआ राजापुर गांव है। राजापुर गांव सुनकर के पथिक से गोस्वामी जी के मन में भाव जगा कि भाई जननी जन्मभूमि स्वर्गादत गरीयसी, अब तक जन्मभूमि के दर्शन का सौभाग्य मिला नहीं, शायद हो सकता है कोई हो, अरे ना भी हो तो एक बार दर्शन तो कर ही लेना चाहिए। वैसे निवृत्ति परायण व्यक्ति को, संन्यस्त व्यक्ति को, चतुर्थाश्रमी व्यक्ति को ग्रह त्याग कर देने के बाद घर जाने की विधि नहीं है। विरक्तवेश ग्रहण करने के बाद अपनी जन्मभूमि में और संसार के अन्य गांव नगरों में उसके चित्त में कोई भेद नहीं रह जाना चाहिए, अपने और पराये का भेद मिट जाना चाहिए। हमारा परिवार है, ये अमुक का परिवार है, ये भेद संसारियों में होता है। भगवान के शरण हो गए तो भगवान के नाते से सारा संसार ही कुटुंब है, परिवार है, अब अपने पराये का भेद खत्म हो गया, नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए आगे आप सुन लेंगे। उसका कारण एक ये है, विरक्त को अपने पूर्वाश्रम के परिवार से भी संबंध नहीं रखना चाहिए और जन्मभूमि से भी संबंध नहीं रखना चाहिए। क्यों, बोलिए राग के जो संस्कार हैं ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि एक बार भजन साधन सत्संग के द्वारा ये शिथिल प्राय हो जाते हैं, किंतु जैसे ही पुनः पूर्व संबंध की स्मृति होती है और रक्त संबंध की प्रगाढ़ता आती है तो फिर बस ये प्रगाढ़ हो जाता है। और सामान्य नहीं, अच्छे से अच्छे ऊंचे कोटि के विरक्त साधक भी मृत्यु के समय अपने परिवार से जुड़ गए तो उनका वह जन्म बिगड़ जाता है। ऐसे अनेक घटनाएं हैं, ऐसे अनेक चरित्र हैं। इसलिए ना तो विरक्त के परिवार के लोगों को किसी भी प्रकार का लौकिक संबंध विरक्त व्यक्ति के प्रति रखना चाहिए, और विरक्त साधक को न ही किसी प्रकार का लौकिक संबंध अपने पूर्वाश्रम के प्रति रखना चाहिए। उसमें दोनों का हित है, परिवार के लोग भी पूर्वाश्रम का संबंध मानकर कुछ करते हैं उसमें उनका अनिष्ट है, और विरक्त ही पूर्वाश्रम के संबंध का स्मरण करके उनके प्रति राग रखता है तो उससे उसके वैराग्य का नाश है, उसका अनिष्ट है। उसे तो पद्म पत्र विवांभसा, जल में कमल की तरह उसे निरुक्त होकर के रहना चाहिए, यही विरक्त की रहनी है। फिर भी विरक्त एक बार चाहे तो आवश्यक नहीं है, विरक्त एक बार चाहे तो अपने घर जा सकता है माता से भिक्षा ग्रहण करने के लिए। भिक्षा से क्या होगा, बोले रहे सहे राग की निवृत्ति हो जाएगी और फिर माता का आशीर्वाद मिल जाएगा, जाओ बेटा तुम्हारा वैराग्यमय जीवन निर्विघ्न हो, खूब भजन करो, तो भगवत प्राप्ति की कुछ बाधा भी होगी तो वो निवृत्त हो जाएगी। और माताओं को ऐसे अवसर पर अत्यंत उदारता का परिचय देते हुए हृदय से अपने पुत्र को आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः उस पुत्र के कारण ही वे पुत्रवती कहलाने योग्य हैं। अब पूज्य श्री राधा बाबा जिस भाग्यशालिनी माता के गर्भ से प्रकट भये होंगे वो कितनी पूजनीय, वो कितनी भाग्यशालिनी, ऐसे महापुरुष को जिसने जन्म दिया। ऐसे ही महापुरुषों को जन्म देने में तो मातृत्व की सफलता है, मातृत्व की सार्थकता है। यदि गृहस्थाश्रम का त्याग करके संन्यास लिया है विवाहित होने के बाद तो पत्नी से भिक्षा मांगने की भी विधि है। पत्नी को माता कह करके माँ माता भवत भिक्षा में देही माता कह करके भिक्षा प्राप्त करे। ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि मानो वह इस विरक्त वेश को इतना पवित्रतम प्रमाणित करे कि जो एक समय हमारी पाण गृहिता पत्नी रह चुकी है अब उसके प्रति भी पत्नी भाव नहीं, वह भी अब मेरे लिए माता के तुल्य हो चुकी है, इस भाव के पोषण के लिए माता भिक्षा दो, भिक्षा लेकर के आवे और वहां से राग को समाप्त करके आवे। और यदि बाल्यकाल में गृहस्थ विरक्त हो चुका है तो यदि वो चाहे तो अपनी माता से भिक्षा प्राप्त करे। भिक्षा का मतलब ये नहीं कि कोई भीख मांग के चावल ले ले या न ले ले गेहूं ले ले, नहीं, उसके हाथ की बनी हुई कुछ रसोई पावे। श्रीमद चैतन्य महाप्रभु जी ने भी संन्यास ग्रहण के पश्चात सची माँ के हाथ की बनी हुई रसोई अद्वैतपुर में शांतिपुर में श्री अद्वैताचार्य महाप्रभु के यहाँ उन्होंने सची माँ के हाथ की बनाई हुई भिक्षा को ग्रहण किया। तो गोस्वामी जी ने मन में विचार किया कि अब भिक्षा लेने वाली बात तो है नहीं क्योंकि कोई है ही नहीं, लेकिन चलो आखिर वहां उत्पन्न हुए हैं, वहां की भूमि का दर्शन तो कर लें एक बार, कैसा है राजापुर गांव। आज तक राजापुर गांव देखा ही नहीं और निकट में ही गांव है, ऐसा विचार करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहां पहुंच गए। देखो गांव का कोई व्यक्ति इनको नहीं पहचानता था, एक सुंदर गौर वर्ण के युवक भव्य रूपधारी महात्मा हैं, सुंदर द्वादश तिलक हैं, दंड अचला लंगोटी कमंडल है, सुंदर संत का वेश है, देख करके तेजस्वी संत को देख करके गांव इकट्ठा हो गया। और जब चर्चा होने पर ये बात पता चली कि पंडित आत्माराम दुबे का तुलसी बाई की कोख से जन्म लेने वाला ये वही बालक है जिस बालक को हम पहचान नहीं सके और आज वह इतना तेजस्वी महात्मा बनकर के यहाँ आया है, अब तो गांव के लोग निहाल हो गए। गोस्वामी जी का जो घर था ना वो खंडहर हो चुका था, क्यों कोई परिवार में तो था नहीं, घर खंडहर हो चुका था। आप तो वहां से जाना चाहते थे पर गांव के लोगों ने प्रेमाग्रह पूर्वक रोका और कहा, बड़े बूढ़े ब्राह्मणों ने प्रेरित किया कर्तव्य कर्म के लिए कि आप ही एकमात्र अवंशधर हैं, ऐसी अवस्था में आपके पूर्वजों का पिंडदान जलदान भी नहीं हो सका है ठीक से, इसलिए एक बार उनका सविधि श्राद्ध तर्पण संपन्न कर दें। गोस्वामी जी ने कहा चलो ठीक है। स्वयं शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने शास्त्र विधि से विधिवत श्राद्ध आदि संपन्न किया और श्राद्ध आदि संपन्न करने के बाद अब आप विचार करें ऐसे पवित्र आत्मा महात्मा के हाथ से जलदान पिंडदान पा करके कौन ऐसा पितर रहा होगा जो श्री ठाकुर जी के धाम में न पहुंच गया हो। आज वे सब गोस्वामी जी के हाथ से जलांजलि प्राप्त करके सदा सर्वदा के लिए तृप्त हो गए। गोस्वामी जी बोले भैया हमारा काम जो था वो तो हो गया। गांव के लोगों ने आपसी सहयोग से जीर्ण शीर्ण घर की मरम्मत करा दी, रंगाई पुताई करा दी, लीप पोत करके घर को बढ़िया कर दिया और बोले पंडित जी अब कुछ दिन तो यहाँ विराजो। बोले अब हमारा काम हो गया, अब इन्हें यहाँ रहकर क्या करेंगे। गांव के लोगों ने कहा महाराज सुना है आप कथा बहुत अच्छी बांटते हो तो इसी गांव में आपका जन्म हुआ और हम गांवने के लोग आपकी कथा से वंचित रह जाएं ये ठीक नहीं, आप कथा सुनाइए। गोस्वामी जी ने मन में विचार किया बिल्कुल ठीक है, पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा किया तो अपने गांव के लोगों के प्रति भी कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। कर्तव्य क्या है? इष्टम धर्मेण योजयेत। और धर्म कौन है? रामो विग्रहवान धर्मः। इन सबको राम कथा सुनाकर राम जी से जोड़ देना है। गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया और कथा कहने बैठे, पर महाराज गांव के लोग तो गांव के लोग, गोस्वामी जी मंगलाचरण कर रहे हैं और गांव के लोग बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने मंगलाचरण करने के बाद ध्यान दिया ये लोग क्या कह रहे हैं, तो उनमें भगवान की कथा विषयक चर्चा तो कोई नहीं कर रहा था कि क्या पूछना है क्या सुनेंगे, सब यही कह रहे थे अरे राम राम देखो तो सही भाग्य कहां से कहां ले जाता है। ये जो महात्मा बैठे ना आज इतने चमकने चमकने से दिव्य स्वरूपधारी, अरे वो हुलसी जो बाई है थी ना अपने पंडितानी आत्माराम दुबे जी के घर से, उन्हीं का तो बेटा है। कोई कहता हमारा भाई लगता, कोई कहता भतीजा लगता, कोई कहता हम इसके चाचा लगते, कोई कहता हम बाबा लगते, यही चर्चाएं हो रही। गोस्वामी जी ने कथा का आरंभ किया। तुलसी तहां न जाइए जहां जन्म को ठाओ, ज्ञान ध्यान पूछे नहीं धरे पुरानों नाओ। तुलसीदास भी कोई नहीं कह ले, बोले वही है राम बोला जो जन्म से ही राम बोला था वही है, अब तो महात्मा बन गया। तुलसी तहां न जाइए जहां जन्म को ठाओ, ज्ञान ध्यान पूछे नहीं धरे पुरानों नाओ। हाँ कुछ ऐसे कारक पुरुष भी होते हैं, अपवाद रूप में भी महापुरुष होते हैं जिनके लिए जन्म भूमि और बाहर की भूमि का भी भेद नहीं रह जाता है, वे वहां रहकर भी अनंत जीवों को शिक्षा देने में समर्थ होते हैं। जैसे हम सबके आदर्श परम श्रद्धे पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी, श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, उनकी प्राकट्य भूमि भी बक्सर और उनकी कर्म भूमि भी बक्सर, और आज भी श्री सीताराम विवाह महोत्सव पूरे भारत में इस कोटि का उत्सव कहीं नहीं होता है। पांडे जी कह रहे थे कल की लीला देख के, कल या परसों की बात, कल की, कल ही कह रहे थे पांडे जी बनारस वाले, कह रहे थे कि कल फुलवारी लीला देख के मामा जी की बहुत याद आ रही। एक ये भी है, लेकिन उनकी रहने कितनी ऊंची थी ये तो निकट वाले जाने। पूज्य बक्सर वाले मामा जी के पूर्वाश्रम की उनकी जो सहधर्मणी रह चुकी थी धर्मपत्नी माता जी, उनका शरीर शांत हो गया। मामा जी वहीं थे लेकिन उनके चित्त पर तनिक भी कोई प्रभाव नहीं हुआ कि किसी का शरीर छूटा है, लोग कहते ना कि चलो मर गए तो चलो देखे हमें चले जाने कहीं नहीं। बाद में माता जी का उत्सव भी महाराज जी की ओर से नहीं मनाया गया। परिकर के लोग परिवार के लोगों के मन में इच्छा हुई, दास को कहा कि माता जी के उत्सव में आपको कथा कहनी है। तो हम मामा जी की जन्मभूमि पर गए, परिवार के लोग थे, कथा हुई, भागवत जी की कथा हुई। हमारी भी इच्छा रही कि एक दिन महाराज जी इस उत्सव में आवें, और हमको भी लोगों ने इशारा किया आप महाराज जी से कहो। तो हमने महाराज जी से निवेदन किया, हमने कहा महाराज जी कथा की पूर्णाहुति कल है, आपका दर्शन नहीं हुआ। तो बड़े स्नेह पूर्वक बोले, भैया बात ऐसी है, श्री गुरुदेव सरकार फलाहरी बाबा की केवल दो बार जाने की आज्ञा थी। जब एक विवाह के समय सरकार दूल्हा सरकार आते हैं तो सब द्वार द्वार पर सत्कार होता है, तो जहां जन्मभूमि वहां भी आरती पूजा होती है, वहां ठाकुर जी का एक बार दंडवत कर लो, दर्शन कर लो आज्ञा, और दूसरी बार गोवर्धन पूजा। बस ये दो आज्ञाएं हैं गुरुदेव सरकार की, वो भी गुरु महाराज की आज्ञा होने के कारण वहां जाते हैं। लेकिन अब उनकी आज्ञा के अनतिरिक्त किसी लौकिक संबंध के कारण हम वहां जाएंगे तो आप ही विचार कीजिए क्या यह मर्यादित होगा। स्वयं उन्होंने कहा क्या यह मर्यादित होगा, आप जैसा कहिए। हमने कहा नहीं महाराज जी, आप जिस आदर्श का पालन कर रहे हैं आपके लिए वही उचित है, नहीं गए। तो ऐसी विरक्ति किसी के मन में हो तो वह अपनी जन्मभूमि पर भी रह सकता है, ऐसी विरक्ति हो तो अपनी जन्मभूमि पर भी रह सकता, पर ऐसी विरक्ति न हो तो बस। फिर तो एक ही भाव हृदय में रखना है
कि तुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो।
आप ही पिता हैं, आप ही माता हैं, आप ही स्वामी हैं, आप ही सहायक हैं। हे नाथ मोहित ही नाते अनेक, मानिए जो भाव है, हमारे सारे नाते आपसे, ये हृदय से स्वीकार करना चाहिए। बोले तुम लोग अपनी अपनी कथा बांच रहे हो, को उसका बेटा है, उसका पोता है, उसका भतीजा है, अब हम कथा कैसे कहें। तब लोग गांव के शांत हुए, गोस्वामी जी ने राम कथा सुनाई। अब गांव के लोगों ने एक विचार और किया, बोले भाई देखो ये पंडित जी अपने हैं गांव के, और आत्माराम जी का घर तो उजड़ गया, अब घर तो बन ही गया है, मरम्मत हो गई है, इनका ब्याह और हो जाए तो हम लोगों को तो कथा सुनने को मिलेगी और मौज आ जाएगी, इसीलिए नहीं जाना चाहिए। हाँ ऐसा भी विचार कर सकते गांव के लोग। महाराज गांव के लोगों ने आग्रह किया, निश्चय कर लिया, और जब गांव के लोगों ने ये बात निश्चय कर ली तो आग्रह गोस्वामी जी से किया, और गोस्वामी जी की उस समय की जो अंतकरण की स्थिति थी वो गुरुदेव के वियोग के कारण ऐसी हो चुकी थी कि उनका कहीं चित्त रमता नहीं था। ऐसी स्थिति में बड़े बूढ़े लोगों के विशेष आग्रह को स्वीकार करके उन्होंने जन्मभूमि पर रहना स्वीकार कर लिया। वे राम कथा कहने लगे और पूरे राजापुर में भक्ति की बाढ़ आ गई, पूरा नगर धन्य हो गया, गांव धन्य हो गया। यमुना जी के उस पार तारीपतो नामक एक गांव है, उस गांव में भारद्वाज गोत्रीय एक ब्राह्मण देवता निवास करते थे। वे कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन, जिसको हम लोग यम द्वितीया कहते हैं ना, यम द्वितीया के दिन यमुना स्नान का पर्व होता है, उस गांव के लोग भी यमुना स्नान करने आए और राजापुर के लोग तो यमुना स्नान कर ही रहे थे और वहां यमुना जी के तट पर ही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा कह रहे थे। वे ब्राह्मण देवता आए और उन्होंने नवयुवक व्यास जी को देखा, तपे हुए स्वर्ण के समान अंग कांति है, महापुरुष के सारे लक्षण गोस्वामी जी के श्रीअंग में थे, दिव्य ब्रह्म तेज से अलंकृत बपू को देख करके वह ब्राह्मण प्रभावित हो गए। बोले भैया ऐसे व्यास जी तो हमने अब तक देखे नहीं, ऐसा रूप, ऐसा सौंदर्य, ऐसा लावण्य और ऐसी तेजस्विता और इतनी सुंदर व्याख्यान शैली हमने सुनी नहीं, देखी नहीं, मानो अमृत की वर्षा कर रहे हूं। अब तो वो भी बैठे और बैठ करके उन्होंने कथा सुनी और कथा के बाद राजापुर के ही बड़े बूढ़े लोगों से पूछा ये व्यास जी जो आए हैं इनका परिचय क्या है। तो गांव के लोग तो वही परिचय देंगे, अरे बोले हमारे गांव के आत्माराम दुबे जी थे। बोले हाँ हाँ वो तो हम हमारे बड़े प्रेमी थे, स्नेही थे, पर उनके वंश में तो कोई बचा नहीं, एक बालक भी पता नहीं बचपन में कहाँ चला गया, उसके बाद कुछ सुनने में नहीं आया। अरे बोले वो वही बालक है आत्माराम दुबे का, अब हम लोगों ने घर बनवा दिया है, वही कथा कहते हैं। अब तो महाराज यह देख करके वो बड़े प्रसन्न हुए, उनकी सुलक्षणा एक विवाह के योग्य कन्या थी। मन ही मन पंडित जी के मन में आया कि भाई देखो पवित्र सजीव पारिण कुल का बालक है, विद्वान है और घर में अकेला ही है, गांव के सब लोग हितैषी हैं, भक्त हैं, पास में ही गांव है, मेरी बिटिया भी सुखी रहेगी, ऐसा सदाचारी विप्र कुमार पति के रूप में प्राप्त करके मन ही मन उस ब्राह्मण ने निश्चय कर लिया कि मैं अपनी पुत्री का विवाह इन्हीं नव युवक व्यास जी के साथ करूंगा। इनकी कन्या का नाम था रत्नावली। वस्तुतः यह रमणी रत्न ही थी, विवाह के योग्य हो चुकी थी, लेकिन कोई उत्तम घर वर नहीं मिल रहा था। उसी समय की बात है, पंडित जी ने अपनी पुत्री को गौरी के अनुष्ठान की एक विशेष विधि बताई। कन्याएं यदि गौरी पूजन करें, गौरी का व्रत करें, तो उनको सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। कल हम लोग लीला में दर्शन कर रहे थे, जगत में आदर्श की प्रतिष्ठा के लिए भगवती श्री सीता जी ने भी जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जनन दामिन दुत गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, कहकर के कल किशोरी जी भी स्तुति कर रही थी गौरी जी की। और महाराज जी रुक्मणी जी ने भी स्तुति की है, नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णम स्वसंतान युताम शिवाम, भूयात पतर में भगवान कृष्ण स्तनुमिलताम, भगवती कात्यायनी का अर्चन ब्रज की कुमारिकाओं ने भी किया है। तो गौरी कात्यायनी सब एक ही स्वरूप है, इनके अर्चन की शास्त्र की विधि है। तो पार्वती जी का गौरी का व्रत किया, अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान की पूर्ति पर इस कन्या को भगवती जगदम्बा गौरी का पार्वती का स्वप्न में दर्शन हुआ और दर्शन दे करके गौरी जी ने कहा पुत्री तुम्हारे योग्य वर राजापुर के पंडित आत्माराम दुबे के पुत्र तुलसीदास जी ही हैं। इसका मतलब है माताजी खीर ही नहीं खिलाती हैं, माताजी तो माताजी हैं, ब्याह भी करवा देती हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान, अन्नपूर्णा ने खीर तो खिलाई और कन्या को आज्ञा दी स्वप्न में कि हाँ विवाह उनसे हो जाए। अब तो देवाज्ञा हो गई, कन्या ने अपने स्वप्न को अपनी माता को बताया। वस्तुतः कन्या नहीं जानती थी तुलसीदास जी के बारे में कुछ भी, पर गौरी जी ने स्वप्न में ये आज्ञा दी है और कन्या की माता ने अपने पति से कहा, तो वे तो कथा सुन के ही आए थे, वे और ज्यादा प्रसन्न हुए कि अरे हमने अभी अपने मन में ही निश्चय किया था, घर में किसी को बताया नहीं और भगवती जगदम्बा पार्वती की भी आज्ञा हो गई, इसका मतलब है कि वो बालक कोई सामान नहीं है, तभी तो भगवती पार्वती ने उस बालक के साथ विवाह करने की आज्ञा दी है। अब तो ब्राह्मण ने पक्का कर लिया, और पक्का करके ब्राह्मण पहुंच गए गोस्वामी तुलसीदास जी के पास और बोले कि भगवती गौरी का आदेश है, आप मेरी अत्यंत सुशीला कन्या रत्न रत्नावली को अधिकृता सहधर्मिणी के रूप में स्वीकार कीजिए। गोस्वामी जी घबरा गए प्रस्ताव सुनकर। अरे बोले, हम तो बचपन में ही घर द्वार छोड़ दिया, अब यहाँ घर ही आश्रम बन गया है, प्रेम से भजन कर रहे हैं, पंडित जी हमारे आगे पीछे भी कोई नहीं है, आप क्या कर रहे हो, तो विचार तो करो। पंडित जी बोले, महाराज पहले तो विचार करने की गुंजाइश भी थी, पर जब से हमारी पुत्री को आज्ञा मिली है भगवती जगदम्बा पार्वती की, तब से तो उसने भी पक्का निश्चय कर लिया और हमने भी पक्का निश्चय कर लिया। गोस्वामी जी बोले, तुम कितना हो पक्का निश्चय करो, मैं विवाह नहीं करूंगा। ब्राह्मण बोला, ठीक है विवाह नहीं करोगे तो हम यहीं बैठ जाते, हम लौट के घर तो जाएंगे नहीं, क्योंकि हम तो नारियल और रोली अक्षत लेके आए थे टीका करने के लिए, और तुम स्वीकार कर नहीं रहे हो, तो हम लौट के घर नहीं जाएंगे, हम अनशन करके यहीं प्राणों का विसर्जन कर देंगे, आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। महाराज वो ब्राह्मण ऐसा विलक्षण, वो वहीं बैठ गए अनशन व्रत लेकर के। अब तो गांव के लोगों ने कहे, भाई ऐसा कितनी बढ़िया बात है, अरे आत्मा राम जी का भी खानदान चलना चाहिए, आकर वंश बेल आगे बढ़ना चाहिए, आपकी क्या हानि है, और देखो अब आप अकेले वंशधर हैं, वंश वृद्धि आपको करनी चाहिए, तरह तरह के प्रस्ताव आने लगे। एक बात और हम प्रसंगवश कह दें, विरक्त को विवाह की आज्ञा नहीं है, विरक्त हो गया है, संन्यास्त हो गया है, तो उसको विवाह की आज्ञा नहीं है। यदि वो विवाहित होता है तो उसे आरूढ़ पतित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आरूढ़ पतित। चतुर्थाश्रम ऊंची अवस्था है, वहां पहुंचने के बाद नीचे गिर गया, उसे आरूढ़ पतित कहा जाता है। जहां जिस सन्यास में शिखा सूत्र का त्याग है, उस सन्यास में तो विवाह की क्या चले इतना अधिक निषिद्ध है, नस्पृशेत दारवीम अपि। शिखा सूत्र का त्याग जिस सन्यास में है उसमें तो अत्यंत अत्यंत निषिद्ध है, और जहां शिखा सूत्र का त्याग नहीं है निषेध वहां भी है, लेकिन वहां अभी उसने शिखा सूत्र का त्याग नहीं किया है, इसलिए वह वैदिक कृत्य करने का अधिकारी है, और वैदिक कृत्य अग्निहोत्र आदि वैदिक कृत्य होते हैं तो उनको वह कर सकता है अपने योग्य कुल की कन्या से विवाह करके। जिसने शिखा सूत्र का त्याग नहीं किया है वो उसके लिए अत्यधिक निंदित नहीं है, सर्वोत्तम पक्ष तो यही है कि वो सर्वथा त्याग ही करे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक प्रकार से वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जैसे विरेस स्वरूप में थे, और शिखा सूत्र वाले हैं, पवित्र विप्रकुल का जन्म है, शास्त्र की मर्यादा का कोई विवाह में अतिक्रमण हो नहीं रहा है, लोगों का आग्रह है, इसलिए इसको स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन इसको आदर्श मानकर दूसरे लोगों को शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। मूल बात हमारे कहने की यही है। आखिर गोस्वामी जी को उस ब्राह्मण के आग्रह के आगे झुक जाना पड़ा, और गांव के बड़े सहयोग से संवत 1583 में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि को गुरुवार को गोधूली वेला में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का पाणिग्रहण संस्कार संपन्न हुआ, गोस्वामी जी का विवाह संस्कार संपन्न हो गया। मंगल मुहूर्त में दुल्हन को लेकर गोस्वामी जी राजापुर आ गए, गांव आ गए। महाराज जैसा नाम वैसा ही स्वरूप था रत्नावती जी का। महाराज देखो, महात्माओं का जो हृदय होता है वो बना बनाया होता है, वो हिसाब किताब वाला नहीं जानते कि तुमने इतना प्रेम किया तो हमने इतना प्रेम किया, ये हिसाब किताब महात्माओं के पास नहीं होता। वो तो जहां भी प्रेम करते हैं पूरा पूरा करते हैं, अधूरापन उनमें होते ही नहीं, निश्चल निष्कपट प्रीति ही शुद्ध प्रीति होती है। तो अब पत्नी के प्रति भी जो इनका प्रेम हुआ वो पूरा हो गया, और रत्नावली परम पतिव्रता, पति को भगवत स्वरूप मानकर अर्चन करने वाली परम सदाचारिणी, परम पतिव्रता। अब तो तुलसीदास जी महाराज इतने अधिक आसक्त हो गए। महाराज जी चरित्र में तो लिखा है कि 5 वर्ष का समय कितने जल्दी बीत गया तुलसीदास जी को पता ही नहीं चला। और ये विलक्षण महात्मा ऐसे के विवाह होकर के आया तो इन 5 वर्षों में तुलसीदास जी ने रत्नावती को, रत्नावली जी को गांव नहीं जाने दिया। तारीपतो गांव जो ससुराल थी गोस्वामी जी की, रत्नावली जी का मायका, वहां जाने नहीं दिया। और ये ऐसी पति की आज्ञा कारणी कि पति की आज्ञा नहीं है तो जाने की आवश्यकता ही नहीं। गोस्वामी जी कहते भाई क्या अंतर पड़ता है, जमुना जी ही तो बीच में है, उधर तुम्हारा गांव है, लोग आ जाते हैं मिल लेते हैं, दर्शन हो जाता है, प्रसन्न हो जाता, जाके क्या करूंगा। मन में भी सोचती हमारे जाने पर सब कार्य घर का इन्हीं को करना पड़ेगा, इसलिए इनकी सेवा ही हमारा परम कर्तव्य है, ऐसा मानकर वो श्रद्धा पूर्वक वहां निवास करने लगी। और गोस्वामी जी ने इन अनुभूतियों को भी कहीं कहीं अपने काव्य में लिखा है। पूज्य श्री स्वामी रामेश्वरदास जी रामायणी जी महाराज ने विनय पत्रिका के एक पंक्ति का उद्धरण दिया है,
ज्यों शुभाय प्रिय लगति नागरी नागर नवीन को।
क्या कह रहे हैं,
ज्यों शुभाय प्रिय लगति नागरी,
किसको,
नागर नवीन को,
जैसे किसी नव नागर को जिसका अभी नया नया ब्याह हुआ है, उस दूल्हे को जैसे अपनी नवीन नागरी अत्यंत प्रिय लगती है, ऐसा एक उदाहरण विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने दिया। और ये दोहा तो बहुत प्रसिद्ध है,
कामी नारी प्यारी लोभी प्रिय जिमिदान तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुई राम।
एक दिन की बात है, किसी प्रेमी भक्त के आग्रह पर तुलसीदास जी महाराज एक गांव में गए, उस गांव का नाम था बरखासन। ये सब इसी क्षेत्र की ही घटनाएं हैं। बरखासन नामक गांव में गोस्वामी जी महाराज गए। इसी बीच में गोस्वामी जी का साला आ गया। साला जानते हैं आप लोग, तो बढ़िया से परिचित होंगे। सालों का श्रेयस बड़े बड़े ग्रंथों में गाया गया है। एक साले की कथा तो पूरे महाभारत में भरी भई है, पूरे खानदान को चौपट कर दिया। धृतराष्ट्र का साले ही तो था शकुन।
बोलो वृंदावन बिहारी,
धृतराष्ट्र का साले ही था ना। देखो साला घर में आवे तो पत्नी का भाई है, उसका आदर करने से पत्नी प्रसन्न होगी, यह लोक व्यवहार मानकर उसका खूब आदर कर देना चाहिए, खीर मालपुआ खिला के उसको विदा कर देना चाहिए, आसन बासन लेके आवे वहीं से कृपा करें, यहां डेरा न डालें सोई अच्छा, क्योंकि जहां जहां साले ने डेरा डाला। हाँ बोलो वृंदावन बिहारी। बाबा जी, बाबा एक संत का स्मरण कराए, कुबा जी महाराज, कुबा जी का चरित्र है ना भक्तमाल में, तो